आज जो सब्जेक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है बिजनेस स्टडी, और हम बात करने वाले हैं पोस्टल एंड कुरियर सर्विसेज के बारे में। आपको बता दें कि जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो बनी हुई है हमारी एक्सपर्ट मिस अंशुल खरवंदा जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
थैंक यू सो मच। सो लर्नर्स, आज की जो हमारा चर्चा का विषय है वो है पोस्टल और कुरियर सर्विसेज, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि लर्नर्स हमने पिछले अपने लेसन में जब डिस्कशन किया था तो भी हमने कम्युनिकेशन सर्विसेज की बात करी थी कि क्या क्या जो हमारे कम्युनिकेशन के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, किस तरह से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सी होती हैं, जो कि रिटन कम्युनिकेशन हो सकती है और ओरल कम्युनिकेशन हो सकती है या फिर ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कई बार हम करते हैं या फिर कई बार हम पर्सनली भी एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर आपको भी जो हम पढ़ रहे हैं उसको समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप भी हमें लिख सकते हैं, अपनी जो दिक्कतें हैं उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। तो अगर अब आपको हमें ये कम्युनिकेट करना है कि आपको क्या दिक्कत हो रही है और क्या पढ़ने में आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो या तो आप हमें पत्र के द्वारा सूचित करेंगे या फिर आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही तरह से अगर आप देखें तो आप अपनी जो समस्या है उसको आप लिखकर हम तक पहुंचाना चाहते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि अगर किसी लर्नर को स्टडी मटेरियल नहीं मिला है या वो जो कोर्स उसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके लिए भी वो NIOS को लिखना चाहते हैं। तो जब आप अपने जो प्रॉब्लम है या फिर जो चीज़ आप बोलना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसे जब आप लिख कर भेजते हैं तो वो आप उसको कम्युनिकेट करते हैं, और जो ये आप कम्युनिकेशन करेंगे ये आप थ्रू पोस्ट कर सकते हैं या आप थ्रू कुरियर भी इसको अपना जो चिट्ठी है उसे आप भेज सकते हैं। तो ये जो आप पत्र भेजते हैं वो आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी भेज सकते हैं या फिर किसी प्राइवेट कुरियर सर्विस प्रोवाइडर द्वारा भी आप इसको भेज सकते हैं। वो एक मिडिलमैन की तरह एक्ट करते हैं जो सेंडर है, यानी कि जैसे अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आप एक सेंडर हैं और अगर आप NIOS को पत्र लिख रहे हैं तो NIOS एक रिसीवर है। तो इसके बीच में जो भी हम एजेंसी को इन्वॉल्व करेंगे, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो चाहे कोई प्राइवेट कुरियर सर्विस हो, तो ये एक इंटरमीडियरी का काम करते हैं, जो जो लेटर है उसको डिलीवर करते हैं जो कंसर्न पर्सन है उस तक। और इसके अलावा अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करें तो कई सारी सर्विसेज हैं जो पोस्ट ऑफिस आजकल पत्र पहुँचाने के साथ साथ उनको भी वो करते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम पोस्ट ऑफिस की जो सर्विसेज हैं उनके बारे में और जान पाएंगे। तो हम जानेंगे कि जो पोस्टल सर्विसेज हैं उनका क्या मतलब होता है और जो वेरियस सर्विसेज हैं जो पोस्ट ऑफिसेज या फिर हमें जो प्राइवेट कुरियर सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं वो कौन सी सर्विसेज हैं, पोस्टल सर्विसेज की इम्पोर्टेंस क्या है और जो प्राइवेट कुरियर सर्विसेज हैं उसका क्या रोल है आज के परिप्रेक्ष्य में, उसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो अगर हम पोस्टल सर्विसेज की बात करें तो जब हम बात करते हैं कि कुरियर सर्विसेज या फिर पोस्टल सर्विसेज, तो ये जानना ज़रूरी है कि पोस्टल सर्विसेज का मतलब क्या है। तो जब भी हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं, और मुझे लगता है आप सभी लोग कभी ना कभी ज़रूर पोस्ट ऑफिस गए होंगे, हो सकता है आपने कुछ पत्र पोस्ट किया हो या फिर आप कुछ स्टैम्प वहाँ से ख़रीदने गए हो या किसी और काम के लिए गए हो, कुछ पार्सल भेजने के लिए गए हो या फिर अपना कुछ आपको मनी डिपॉजिट कराना हो सेविंग्स अकाउंट में पोस्ट ऑफिस में। तो हम देखते हैं कि ये सारी वैरायटी ऑफ सर्विसेज हैं जो हमें पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल रहती हैं, जैसे कि लेटर्स को लाना ले जाना, जो अगर किसी को कोई पैसा भेजना चाहता है एक जगह से दूसरी जगह उसके लिए अरेंजमेंट्स करना, जो मनी का कोई डिपॉजिट करना चाहता है तो उसको एक्सेप्ट करना, ये जो है ये विभिन्न तरीके की सर्विसेज हैं जो पोस्ट ऑफिसेस हमें ऑफर करते हैं, जिनका जो है पब्लिक भरपूर इस्तेमाल करती है। इन्हीं सब सर्विसेज को जो है हम पोस्टल सर्विसेज कहते हैं। तो पोस्टल सर्विसेज जो हैं उनकी तब से शुरू हुई जब हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हमें रिटन में कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। तो जब बहुत पहले की अगर हम बात करें तो मैसेजेस जो हैं वो रिटन में एक्सचेंज होते थे, तब भी होते थे। और पुराने जमाने में जो है कुछ लोग इसमें लगा दिए जाते थे, जो दौड़ कर या एक जगह से दूसरी जगह जाकर खत या फिर जो इम्पोर्टेंट संदेश है वो पहुंचा देते थे, जहां पे भी पहुंचाना है वहां पर। तो जो पोस्टल सिस्टम आज हमारा है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव तभी हो पाया है क्योंकि जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो इफ़ेक्टिव हो पाया है, वो पूरा फैल गया है और वो एक नेटवर्क की तरह काम करता है। जो हमारे रोडवेज हैं या जो रेलवेज हैं वो एक नेटवर्किंग प्रोवाइड करती हैं, पूरे जाल की तरह पूरे देश में फैला हुआ है, जिससे कि हम एक जगह से दूसरी जगह हमारा कम्युनिकेशन या फिर हम पहुंचना चाहें तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि रेलवेज और रोडवेज से पहले की, तो पोस्टल सर्विसेज उतनी इफेक्टिव इससे पहले नहीं थी, लेकिन जब से रोडवेज और रेलवेज इफेक्टिव हुए हैं उसके बाद से हमारी पोस्टल सर्विसेज भी जो है वो बहुत इफेक्टिव हो गई हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो 1837 तक पोस्टल सर्विसेज जो है खाली ऑफिशियल मेल के लिए ही यूज़ की जाती थी, लेकिन 1837 के बाद से जो है पोस्टल सर्विसेज को पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया गया। और आज के टाइम में हम देखें तो तब से लेके आज तक अगर हम देखें तो पोस्टल सर्व ऑफिसेज जो हैं, जो पोस्ट ऑफिसेज हैं, वो बहुत सारी सर्विसेज ऑफर करते हैं, जिसके बारे में भी हमने और भी बात करी इससे पहले भी, कि रेमिटेंस ऑफ मनी है, डिलीवरी ऑफ पार्सल्स है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और भी इस तरह की कई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो पोस्टल सर्विसेज हैं या जो पोस्ट ऑफिस की जो सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन सर्विसेज को एडमिनिस्टर करती है थ्रू आउट द कंट्री, और जो भी चार्जेस उसके लिए वो लगाते हैं वो मिनिमम चार्जेस हैं जो कि एक कॉमन मैन अफोर्ड इजीली कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि कई सारी प्राइवेट पोस्टल सर्विस कुरियर कंपनीज भी हमें अवेलेबल हैं, आप बहुत से नाम देखते होंगे। और जो पोस्टल सर्विसेज या फिर जो हम कुरियर सर्विसेज की भी बात कर रहे हैं तो इसको हम एक डिपेंडेबल मीन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन मानते हैं, या फिर एक रिलायबल तरीका है। अगर हमें पैसे भी भेजने हैं, मनी ऑर्डर भेजना है, कुछ लोग हैं जो हमसे दूर रहते हैं उन्हें हमें कुछ भेजना है, तो उसके लिए इसको एक रिलायबल तरीका माना गया है। हालांकि अगर हम आज के टाइम पर देखें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब पुरानी होती जा रही हैं, क्योंकि अगर हमें पैसा भेजना होता है तो हम तुरंत ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स करते हैं, और अगर हमें कोई रिटन कम्युनिकेशन भी भेजनी होती है तो हम रिटन फॉर्म में भी भेजनी होती है तो हम उसे ईमेल के थ्रू भेजते हैं, जिससे कि तुरंत ही हमारी जो कम्युनिकेशन है वो पहुंच जाती है, चाहे वो रिटन में हो, अगर हम पैसा भी भेजना चाहें तो वो भी तुरंत ही पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम इस चीज़ों को देखें जो ईमेल है, तो उसके साथ साथ आज भी अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अभी भी ये मेंटेन करके रखते हैं कि जो भी वो पत्राचार होता है उसको वो थ्रू पोस्टल डिपार्टमेंट भी करते हैं, जिससे कि एक रिटन जो लेटर उनको इशू किया गया है, जो जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को दिया गया है, वो एज एविडेंस भी उनके लिए सर्व करता है। तो इसलिए आज के टाइम पे भी अगर हम देखें तो पोस्टल सर्विसेज जो हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उसका पूरी तरह से यूज़ करते हैं और एज एविडेंस वो उनको सर्व करते हैं। तो अगर हम सर्विसेज की बात करें कि पोस्ट ऑफिसेज कौन सी सर्विसेज रेंडर करते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा भी कि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सी चीज़ें बदलती जा रही हैं या बदल चुकी हैं, लेकिन फिर भी अगर बदल भी चुकी हैं या बदल रही भी हैं तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले तक हम क्या यूज़ करते आए थे, किन चीज़ों पे हमारी डिपेंडेंसी थी और अब हम क्या कर रहे हैं। तो अगर हम क्लासिफाई करें जो डिफरेंट सर्विसेज पोस्ट ऑफिस ऑफर करते हैं, तो वो मेल सर्विसेज हैं, रेमिटेंस सर्विसेज हैं, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज और फिर कुछ और सर्विसेज भी हैं। तो जब हम मेल सर्विसेज की बात करते हैं, मतलब कि जब भी हमें कोई पत्राचार करना है, लेटर्स भेजने हैं, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भेजने हैं, कुछ डिफरेंट ओकेजन्स पे हमें कुछ भेजना है, तो हम कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो हम थ्रू पोस्ट ऑफिस या थ्रू लेटर्स करते हैं। कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे हो सकता है आप कुछ गिफ्ट या कुछ ग्रीटिंग्स भी अपने फ्रेंड्स को भेजना चाहें, और इन्हीं सब सिचुएशन में पोस्ट ऑफिस जो आपकी मदद करता है कि आप वो मैसेजेस भेज सकें, या फिर अगर किसी और ने आपको वो मैसेज भेजा है तो वो आप तक उन मैसेजेस को पहुंचाता है। मेल सर्विस जो है एक पोस्ट ऑफिस की हम कह सकते हैं एक मेन सर्विस है, जो कलेक्शन जो लेटर और पार्सल्स का जो कलेक्शन होता है सेंडर से जो भेजे जाते हैं, और जो रिसीवर्स तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वो सभी फंक्शंस को कैरी करता है हमारा इंडियन पोस्टल सर्विस डिपार्टमेंट। तो इंडियन पोस्टल सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो इनलैंड और इंटरनेशनल दोनों ही मेल्स के साथ में डील करता है। इनलैंड मेल वो होती है जहाँ सेंडर और रिसीवर जो है वो दोनों सेम कंट्री में ही रहते हैं, जैसे कि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात कर रहे हैं तो इंडिया में ही रहते हैं, और दूसरे हाथ पे जब सेंडर और रिसीवर जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं तो उसे हम इंटरनेशनल मेल कहते हैं। तो अगर हम देखें कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास में उपलब्ध रही हैं आज तक लेटर लिखने के लिए, तो सबसे पहले हम पोस्ट कार्ड की चर्चा करेंगे। तो पोस्ट कार्ड एक बहुत ही चीपेस्ट मीन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन है, वो एक कार्ड की तरह होता है जिसमें दोनों साइड पे हम अपना मैसेज लिख सकते हैं, वहाँ पे हमें स्पेस रहती है जहाँ पे हम एड्रेस का लिख सकते हैं, जो रिसीवर जिसको हमें भेजना है उनका हम एड्रेस लिख सकते हैं। अगर हम पोस्ट ऑफिस में देखें तो वहाँ पे दो तरह के पोस्ट कार्ड अवेलेबल रहते हैं, एक ऑर्डिनरी पोस्ट कार्ड होता है और दूसरा कंपटीशन पोस्ट कार्ड होता है। तो ऑर्डिनरी पोस्ट कार्ड ज़्यादातर लेटर्स लिखने के काम में आता है, और ज़्यादातर जो कंपटीशन पोस्ट कार्ड्स हैं ये पहले और भी ज़्यादा यूज़ होते थे, जब जैसे कि कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं रेडियो पे टेलीविजन में, अगर उसके आंसर्स हमें देने हैं तो उसको इसके लिए हम थ्रू कॉम्पिटिशन पोस्ट कार्ड्स रिप्लाई करते थे। तो जब हम पोस्ट कार्ड पे हम कुछ भी अपना मैसेज लिखते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो मैसेज है वो उसी जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो उतने होने चाहिए कि जो पोस्ट कार्ड है उस पर पूरा हमारा जो हम कहना चाहते हैं वो आ जाए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं रहती है, और ये क्योंकि एक ऑलरेडी प्रिंटेड पोस्ट कार्ड रहता है जिसमें एक साइड का हाफ पोर्शन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड रहता है, और आपको उसके बाद में अपना अपनी डिटेल्स या अपना एड्रेस भी उस पर मेंशन करना होता है, तो इसलिए साइज जो है इसमें बहुत कम रहता है, तो उसी हिसाब से आपको अपना मैसेज भी लिखना होता है। इसके अलावा लर्नर्स इनलैंड लेटर होता है। इनलैंड लेटर की अगर हम बात करें तो पोस्ट कार्ड जैसा कि उसमें जो भी लिखा है उसको कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी देख सकता है, क्योंकि वो ओपन होता है, उसमें प्राइवेसी नहीं होती है। लेकिन हम इनलैंड की अगर बात करें तो इनलैंड सेफर होता है कंपैरेटिवली पोस्ट कार्ड से अगर हम देखें तो, और जो नाम है सेंडर का वही देखा जा सकता है और जो रिसीवर का नाम है सिर्फ वही देखा जा सकता है, और बाकी जो रिटन कंटेंट होता है वो उसके अंदर क्लोज हो जाता है, वो डिस्क्लोज्ड नहीं रहता है। उसके अलावा एनवलप में भी हम अपने लेटर्स डाल के भेज सकते हैं। तो कई बार होता है कि किसी कोई ऐसा हमें डॉक्यूमेंट भेजना है या फिर कुछ कोई लेटर है जो ऑलरेडी प्रिंटेड लेटर है और उसको हमें भेजना है, तो उसके लिए हम एनवलप का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इसमें हम कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस या दूसरे तरह के मैसेजेस जो हम एक ऑफिशियल मैसेजेस भी हो सकते हैं जो हम एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस को भेजना चाहते हैं, वो हम थ्रू एनवलप में डालकर भेज सकते हैं। तो एनवलप जो है वो इंश्योर करता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर हैं वो सीक्रेट रहें, और उसका जो भी यूज़ है वो जिस तक भेजा जा रहा है वही उसको देख पाए। कि फॉर एग्जांपल अगर आप भी किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपसे आपका बायोडाटा मांगा गया है और आपको भेजना है तो आप थ्रू पोस्ट उसको एनवलप में डाल के भेजते हैं। इसी तरह से अगर हम फॉर्म्स भी भरते हैं, अगर हम देखें कि कई जगह आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जा रही है, लेकिन उस कई जगह हम देखते हैं कि उसमें ये भी लिखा रहता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आप इस डेट तक भर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हार्ड कॉपी है या जो प्रिंट आउट है उस ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो आपको इस डेट से पहले, जो भी उनकी डेट मेंशन हो उससे पहले आपको पोस्ट भी करना होता है। तो इसलिए पोस्टेज जो है वो आज के टाइम पे भी हम इसका यूज जो है वो कर रहे हैं। पोस्टल एनवलप्स की अगर हम बात करें तो सभी पोस्ट ऑफिस में ये अवेलेबल हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए या फिर लेटर्स को मेल करने के लिए। आज भी ये गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस में या दूसरी बिजनेस फॉर्म्स में उसी तरह से इनको यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा अगर हमें कुछ और इसमें कुछ हल्के फुल्के एनक्लोजर्स डाल के भेजने हो तो वो भी हम इसके अंदर भेज सकते हैं। जैसे अगर हमें कुछ फोटोग्राफ्स भेजनी हैं, कुछ हमें ग्रीटिंग कार्ड्स भेजने हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी हम इसके अंदर डालकर भेज सकते हैं। इसके अलावा पार्सल पोस्ट हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब आपको स्टडी मटेरियल आपका मिलता है तो वो आपको एक पार्सल के फॉर्म में मिलता है, क्योंकि जब वो पोस्ट किया जाता है तो वो ना तो हम किसी एनवलप में उसको भेज सकते हैं और ना इस तरह से उसको भेजा जा सकता है, इसलिए वो एक पार्सल के फॉर्म में आप तक पहुंचाया जाता है। तो पार्सल जो है एक रिलायबल और एक इकोनॉमिकल तरीका है अपने जो सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का, जैसे कि बुक्स हैं या फिर आपको किसी को कुछ गिफ्ट भेजना है या फिर कुछ और इम्पॉर्टेंट आइटम है तो उसके लिए आप थ्रू पार्सल उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। उसके अलावा जो है बुक पोस्ट भी होती है। जो भी आर्टिकल्स हैं जो प्रिंटेड मटेरियल के फॉर्म में होते हैं, प्रिंटेड बुक्स या फिर पीरियोडिकल्स या ग्रीटिंग कार्ड्स के फॉर्म में होते हैं, उनको जो है एज बुक पोस्ट मेल किया जा सकता है। तो बुक पोस्ट में भी जो एनवलप्स हैं जिसमें बुक्स या फिर डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी हमने उसके अंदर डाला है वो हमें बंद नहीं करना होता है या फिर उसे हमें सील नहीं करना होता है, और जो भी उसका जो एनवलप है उसके ऊपर हमें मेंशन करना होता है कि ये एक बुक पोस्ट है। तो जो पोस्टेज इसमें होती है, जो बुक पोस्ट के केस में होती है, वो अगर हम सील्ड एनवलप की बात करें तो उस केस से कई कम होती है, क्योंकि इसमें एनवलप जो है वो खुला रहता है या फिर उतनी सीक्रेसी नहीं मेंटेन होती है। उसके अलावा जो पोस्ट ऑफिसेस और सर्विसेज रेंडर करते हैं या फिर जो रेमिटेंस सर्विसेज रेंडर करते हैं और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कि हमने बात किया था कि मनी ऑर्डर है या फिर कुछ पोस्टल ऑर्डर है जिससे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह अपना मनी ट्रांसफ़र कर पाएँ, चाहे वो कंट्री के अंदर हो या फिर कंट्री के बाहर हो, उसके लिए भी इसको यूज़ में लाया जाता है। तो जैसे कि मनी ऑर्डर है तो मनी ऑर्डर जो है वो पोस्ट ऑफिस से भेजा जा सकता है मनी ऑर्डर सर्विस के द्वारा। तो मनी ऑर्डर वो एक पोस्ट ऑफिस इशू करता है दूसरे पोस्ट ऑफिस को और वो एक एक डेफिनेट सम ऑफ मनी के लिए होता है और जिस पर्सन का नाम उसमें मेंशन है उसी के लिए ही वो होता है। तो अगर आप किसी को पैसा भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है और जो एक छोटा अमाउंट की पेमेंट पे आपको मिलता है, और जो भी फॉर्म है उसके अलावा जो भी आप उसके जो चार्जेस हैं वो आपको देने होते हैं, और मैक्सिमम अमाउंट पहला तो इसका 5,000 रुपीज़ था जिसमें हम इसको मैक्सिमम अमाउंट एक बार में हम इसको भेज सकते हैं, और वहाँ पे कुछ थोड़ी सी स्पेस भी रहती है जहाँ पे आप अपना मैसेज लिख सकते हैं, जिसको आप पैसे भेज रहे हैं उसके लिए आप अपना एक छोटा सा मैसेज भेज सकते हैं। तो इस सर्विस के लिए पोस्ट ऑफिस जो है एक स्पेसिफिक कमीशन चार्ज करता है सेंडर से, जो वेरी करती है, अगर जितने ज़्यादा पैसे होंगे जो सर्विस होता है वो भी उतनी ही ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो पोस्टल ऑर्डर है, पोस्टल ऑर्डर भी इशू किया जा सकता है। इंडियन पोस्टल ऑर्डर के बारे में आप, मुझे लगता है आप जानते होंगे, कन्वीनियंट मेथड होता है मनी एक जगह से दूसरी जगह भेजने का, और कई जगह हम देखते हैं कि अगर आप किसी जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं तो उसमें भी ये लिखा होता है कि आपको इसके साथ में इतने रुपए का पोस्टल ऑर्डर बनवाना है या उसको लगाना है। तो पोस्टल ऑर्डर बनाने के लिए एक जो भी जितने रुपए का हमें पोस्टल ऑर्डर बनवाना है उसके अलावा उसकी एक स्पेसिफिक फ़ी होती है जो हम पे करके पोस्टल ऑर्डर ऑब्टेन कर सकते हैं और जहाँ ज़रूरत है वहाँ उसको भेज सकते हैं। उसके अलावा कुछ बैंकिंग सर्विसेज भी होती हैं जो बैंक जो पोस्ट ऑफिस भी प्रोवाइड करते हैं। तो पोस्ट ऑफिस जो है वो मनी के साथ में भी डील करते हैं, तो कस्टमर्स का पैसा एक्सेप्ट करना, उसको पोस्ट ऑफिस में सेफली रखना और जब ज़रूरत हो तो वो उन्हें देना। तो इसके अलावा अलावा जैसे कि हम बैंक के बारे में जानते हैं कि बैंक जो है वो पैसा रखते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो लोन प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह से कुछ फंक्शंस इस तरह के पोस्ट ऑफिस भी रेंडर करते हैं। उसके अलावा कुछ स्कीम्स भी होती हैं पोस्ट ऑफिस में जो वो लोगों को सेविंग्स या फिर करने के लिए मोटिवेट करने के लिए करते हैं, जिससे कि जो लोग हैं वो उनके, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह जिसकी पहुंच है, तो छोटे से छोटी जगह पे भी पोस्ट ऑफिस होता है, तो जो लोग वहाँ पर रहते हैं अगर वहाँ कोई आसपास बैंक नहीं भी है तो वो पोस्ट ऑफिस में जाकर जो अपनी जमा पूंजी है उसको सेफली रख सकते हैं। जो भी वो स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं उन लोगों के लिए उसका वो फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये थ्रू पोस्ट ऑफिस की गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहाँ बैंक की पहुँच नहीं है वो भी इन सर्विसेज की अवेलेबिलिटी उठा सकें। उसके अलावा अगर हम बैंकिंग सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट की फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल रहती है, जिसमें आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और अकाउंट जो है वो जॉइंटली भी ऑपरेट किया जा सकता है, एक एक पर्सन से ज़्यादा भी, दो लोग भी उसको जॉइंटली ऑपरेट कर सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस भी हमें इंटरेस्ट देते हैं जो हम डिपॉजिट करते हैं वहाँ से, और जो वो इंटरेस्ट है वो टोटली इनकम टैक्स से भी एग्जेम्प्ट होता है। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस कई सारी और भी स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि 5 ईयर पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है, RD आप वहाँ पर खोल सकते हैं, टाइम डिपॉजिट स्कीम है, एक टाइप ऑफ फिक्स डिपॉजिट रहता है, या फिर जो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है जो पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करते हैं, या PPF अकाउंट है, किसान विकास पत्र स्कीम है, या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। ये स्कीम्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आज भी लोग इनका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। सो लर्नर्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे, हम पोस्ट ऑफिस की बैंकिंग सर्विसेज का बात कर रहे थे कि पोस्ट ऑफिस कौन कौन सी बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि हमने पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट स्कीम के बारे में जाना, या फिर जो उनकी रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम होती है, जैसा कि बैंक में भी हम जानते हैं कि RD की स्कीम होती है, उसी तरह से पोस्ट ऑफिस भी जो है रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम प्रोवाइड करता है, जिसको हम एक मिनिमम अमाउंट के साथ खोल सकते हैं, और जो है डिपॉजिट जो है हमें हर महीने करना होता है, और इसका एक फिक्स पीरियड भी होता है, ज़्यादातर 5 साल, और 1 साल के बाद में जो है आप 50% अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये जो अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं 50%, ये सिर्फ आप एक बार विड्रॉ कर सकते हैं 5 साल में, और जो है आप एक से ज़्यादा RD अकाउंट भी खोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। इसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक ही अकाउंट खोलना है, आप एक से ज़्यादा भी खोल सकते हैं, एक सेम पर्सन के नाम पे भी वो हो सकते हैं। और ये अकाउंट जो है आप इसको 5 साल पूरे होने के बाद में भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ईयर टू ईयर बेसिस पे आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम है, तो जो इसको जो है इसको भी कोई भी इंडिविजुअल इसको ओपन कर सकता है, जिसमें एक मिनिमम बैलेंस होता है और इसमें भी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। और इसमें जो है क्योंकि टाइम डिपॉजिट स्कीम है तो उसको एक फिक्स पीरियड के लिए करना होता है, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल, जिसका भी जैसी रिक्वायरमेंट हो। उसके बाद जो इंटरेस्ट होता है इस अकाउंट पे वो एनुअल बेसिस पे दिया जाता है, लेकिन उसकी जो कंप्यूटेशन है वो क्वार्टरली की जाती है। ये अकाउंट एक ट्रस्ट के द्वारा भी खोला जा सकता है, खुलवाया जा मतलब अगर कोई ट्रस्ट भी चाहे इस अकाउंट को खुलवाना तो वो भी इसको खुलवा सकते हैं। तो इसमें जो अमाउंट होता है या फिर जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो भी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होती है। उसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है, इसका बेनिफिट बहुत से लोग उठाते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद भी जिनको पैसा मिलता है वो अपना पैसा जो है पोस्ट ऑफिस में कई बार रखवा देते हैं और मंथली इनकम पोस्ट ऑफिस से लेते हैं। तो इस स्कीम में होता क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी जो है वो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर दिया जाता है 6 साल के लिए, और डिपॉजिटर्स जो है वो इंटरेस्ट उस पे लेते हैं हर महीने। तो मिनिमम जो है और मैक्सिमम इसका अमाउंट मेंशन्ड है, और ज्वाइंट अकाउंट भी इसमें हो सकता है, उसके केस में भी अमाउंट जो है वो अलग हो जाता है। तो इस तरह से जो इंटरेस्ट जो मिलता है डिपॉजिट अकाउंट पे, वो जो है उस पेबल होता है जब मेच्योरिटी होती है, तो उसमें उसके बाद जो है वो पेबल हो जाता है। तो जो इंटरेस्ट है एज वेल एज जो बोनस मिलता है, दोनों ही इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट रहते हैं। उसके बाद हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे, तो ये 6 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम भी पोस्ट ऑफिस लेके आए थे। और NSCs जो है वो पोस्ट ऑफिस से परचेज किए जा सकते हैं, कोई एडल्ट इनको परचेज कर सकता है, अपने लिए परचेज कर सकता है, या फिर किसी माइनर के लिए परचेज कर सकते हैं, और 2 एडल्ट जो है जॉइंटली भी इसको परचेज कर सकते हैं, या फिर कोई ट्रस्ट भी इसको परचेज कर सकता है जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हों। तो मिनिमम जो अमाउंट है डिपॉजिट का वो 100 रुपीज़ होता है इसमें, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और ये सर्टिफिकेट्स भी 100, 500, 1000, 5000 या 10000 की डिनोमिनेशंस में अवेलेबल रहते हैं। इंटरेस्ट जो इसमें अवेलेबल होता है वो हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और पेबल होता है मेच्योरिटी के टाइम पे। तो 6 ईयर्स के बाद में जो है इस सर्टिफिकेट्स को पोस्ट ऑफिस से इन कैश कराया जा सकता है। इसके बाद में 15 ईयर पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट स्कीम है, उसके बारे में भी मुझे लगता है आप सब जानते होंगे। तो इंडिविजुअल्स जो हैं इस अकाउंट को, PPF अकाउंट को अपने नाम पे या फिर किसी माइनर के नाम पे भी खुलवा सकते हैं, और साल भर में लगभग एक डिपॉजिट इस अकाउंट में ज़रूर करना होता है, और मैक्सिमम जो है मैक्सिमम डिपॉजिट इसमें 1.5 लाख रुपए तक का हो सकता है एक साल में, जो कि आप एक साथ भी 1.5 लाख रुपए जमा करा सकते हैं, या फिर मैक्सिमम आप 12 इंस्टॉलमेंट्स में भी वो पैसा जमा करा सकते हैं। मिनिमम जो है जो रिक्वायरमेंट है वो 500 रुपीज़ आपको कम से कम उसमें डिपॉजिट कराना ही होता है साल में एक बार। और जो इसमें डिपॉजिट आप अमाउंट कराते हैं वो भी आपको एक मतलब प्रॉपर डिनोमिनेशंस में आपको कराना होता है, मतलब वो 100 या फिर 200 इस तरह से उसके डिजिट्स होने चाहिए। मतलब अगर आप कुछ ऐसा अमाउंट डिपॉजिट कराना चाहें कि 1250 रुपये या फिर इस तरह से, तो उसमें भी थोड़ी दिक्कत आती है, ये इसमें वो अलाउ नहीं करते हैं। तो इसमें भी जो आपको लोन फैसिलिटी है वो आपको देते हैं कि आप कुछ साल के बाद अपने ही अकाउंट से लोन ले सकते हैं, और विड्रॉल भी आप अपने अकाउंट से कर सकते हैं। जो जो अगर आपको अपने ही अकाउंट से लोन लेना है तो वो आप 3 साल के बाद ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको विड्रॉल करना है अपने ही अकाउंट से तो वो आप 6th ईयर के बाद से उसको कर सकते हैं। इसमें भी जो है अंडर इनकम टैक्स आपको डिपॉजिट पे रिबेट मिलती है, और इंटरेस्ट जो इनकम है वो भी फुली जो है टैक्स फ्री होती है। तो इसलिए बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट पर्पसेस इसको इसकी फैसिलिटी का भी को भी बहुत लोग अवेल करते हैं। उसके अलावा जो किसान विकास पत्र स्कीम है, इसमें एक फिक्स्ड सम ऑफ मनी जो है वो कुछ टाइम में डबल हो जाता है। शुरुआत में जब ये स्कीम आई थी तो बहुत से लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, और अभी इसका जो पीरियड है डबल होने का वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और लेकिन फिर भी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें भी जो कोई एडल्ट जो है वो इसको ले सकते हैं, किसी माइनर के नाम पे ले सकते हैं, जॉइंटली ले सकते हैं, कोई ट्रस्ट भी इसको ले सकता है, और इसको भी डिनोमिनेशंस जो हैं इसकी जो अवेलेबल हैं वो 100, 500 या 1000 में भी ये अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इसमें भी पर्सन डिपॉजिट कर सकते हैं जितना वो अमाउंट चाहें, बट ये 15 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए, और उसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 5 ईयर्स का होता है, और इसको इंडिविजुअली भी ऑपरेट किया जा सकता है, और जॉइंटली वो अपनी स्पाउस के साथ में भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। एज जो है इसके लिए कम से कम 60 ईयर्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इसमें इस स्कीम की को अवेल कर सकते हैं, इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये जैसा कि आप नाम से ही सुन रहे हैं कि ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है, इसीलिए इसको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी कहा गया है। तो लर्नर्स, हमने बात करी बैंक की जो मेल सर्विसेज हैं उसके बारे में, जो रेमिटेंस सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है उसके बारे में भी हमने बात करी, उसके अलावा जो बैंक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके बारे में भी हमने चर्चा करी। इसके साथ साथ बैंक कुछ इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज हैं जो इनिशियली जब इंट्रोड्यूस की गई थी तो पोस्टल सर्विसेज या जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ही की गई थी, लेकिन धीरे धीरे इसको जो एम्प्लॉयज़ स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के थे उस पर भी इनको एक्सटेंड कर दिया गया, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या फिर यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक्स हैं उनके उनके लिए भी इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया। तो इसमें जो भी लोग हैं जो बिलो 50 ईयर्स ऑफ एज के हैं वो उनको ये फैसिलिटी रहती कि वो अपने लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हैं अब एक फिक्स प्रीमियम जो है उसको पे करने के बाद। उसके अलावा रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भी पोस्ट ऑफिस ने निकाली थी, जिसमें कि वो लाइफ इंश्योरेंस कवरेज देते थे उन लोगों को जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं या फिर जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जिसको हम कहते हैं उनको बिलोंग करते हैं, इसीलिए इसका नाम ही आप देख रहे हैं कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है। और इस स्कीम के अंतर्गत अगर आप देखें तो जो इंश्योर्ड पर्सन है वो एक लो प्रीमियम पे करते हैं इंश्योरेंस कवरेज के लिए। उसके अलावा कई दूसरी पोस्टल सर्विसेज भी अवेलेबल हैं जो पोस्ट ऑफिसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सेल ऑफ स्टैम्प्स हैं, रेवेन्यू स्टैम्प का सेल है, रिक्रूटमेंट स्टैम्प्स हैं, इस तरह के जो डिफरेंट स्टैम्प्स हैं ये भी पोस्ट ऑफिसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा कई सारे ऐसे फॉर्म्स भी होते हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए जो हमें पोस्ट ऑफिस में ही प्रोवाइड होते हैं, मिलते हैं, जहां हम उनको खरीद सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी है या कई बार एसएससी के फॉर्म्स हैं, इस तरह के जो नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स हैं इनके फॉर्म्स भी पोस्ट ऑफिस टाइम टू टाइम प्रोवाइड हमें करता रहा है। उसके अलावा कई बार पोस्ट ऑफिस जो हैं वो हमें फैसिलिटी देते हैं कि वो हमारे बिहाफ पे हमारा जो बिल कलेक्शन है वो करके उसका पेमेंट कर दें, या जैसे कि टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर बिल्स हैं। उसके अलावा जो पेंशन पेमेंट है पेंशनर्स की कन्वीनियंस के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये अरेंजमेंट्स किए थे, जो पेंशन होगी लोगों की वो थ्रू पोस्ट ऑफिसेस होगी, तो इसलिए हम देखते रहे हैं टाइम टू टाइम कि मिलिट्री, रेलवेज, कोल माइंस, टेलीकॉम के जो पेंशनर्स रहे हैं उन्होंने इस फैसिलिटी का को अवेल किया है और अपने नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिसेस हैं उससे वो पेंशन कलेक्ट करते रहे हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ शॉपीज भी होती हैं जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, जो पोस्टल स्टेशनरी आइटम्स हैं, जो उनकी ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, या स्मॉल आइटम्स जो कस्टमर्स लेना चाहेंगे वहाँ से, या उन्हें ज़रूरत हो सकती है पोस्ट करने के टाइम पे, ये उनको वहाँ पर पोस्ट ऑफिसेज में अवेलेबल रहता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि कई लोग भी ये शौक रखते हैं कि वो पोस्टेज स्टैम्प्स कलेक्ट करें, डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। तो जो टाइम टू टाइम इसके लिए जो पोस्टल सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं वो भी जो डिफरेंट थीम्स हैं उसके हिसाब से, या फिर जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है हमारी कंट्री की उसके हिसाब से अलग अलग स्टैम्प्स निकालते रहे हैं, जो कि नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर किसी फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में होते हैं, उनको ये ऑनर करने का ये भी एक तरीका रहा है। उसके अलावा जो ग्रामीण संचार सेवक स्कीम है, जिससे कि जिसको ये सोचा गया था कि हर एक इंसान को ये फैसिलिटी दी जाए, चाहे वो रूरल एरियाज में भी रहते हों, कि वो टेलीफोन पे बात कर सकें जब उनको ज़रूरत हो, जो या उन्हें उन्हें भी अगर अपने किसी रिलेटिव या किसी से बात करनी हो, तो ये एक जॉइंट एफर्ट था बीएसएनएल का और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। तो स्कीम में क्या था कि पोस्टमैन जो है वो एक फ़ोन कैरी करते थे जब वो मेल्स डिलीवर करते थे पोस्ट ऑफिस से लोगों के घर तक, तो वो साथ में फ़ोन भी कैरी करते थे और लोग जो है वो उस फ़ोन का यूज़ करते थे, अगर उस फ़ोन से उन्हें बात करनी है किसी से तो वो एक स्पेसिफिक जो स्पेसिफाइड चार्ज था वो देने के बाद उस फ़ोन को यूज़ करते थे, जितनी देर बात करते थे उस हिसाब से उनसे चार्ज दिया जाता था। लेकिन ये जो फैसिलिटी थी ये स्पेसिफिक रूरल एरियाज़ के लिए ही थी और उनको ही ये प्रोवाइड की गई थी। सो लर्नर्स, इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिसेस की जो इम्पोर्टेंस है वो हम सभी जानते हैं कि पोस्ट ऑफिसेस हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट रहे हैं, और चाहे वो मेल ट्रांसमिशन की बात हो या फिर वो रेमिटेंस सर्विसेज की बात हो या बैंकिंग सर्विसेज या फिर इंश्योरेंस सर्विसेज की बात हो। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि पोस्टल सर्विसेज जो हैं वो एक बहुत ही चीपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। हम सर्विसेज जो सेविंग जो सर्विसेज वो ऑफर करते हैं उन सब के बारे में हमने जाना, और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो सेविंग्स करें और पोस्ट ऑफिसेज में जाके अपना पैसा इकट्ठा करें, और सेफ रेमिटेंस जो है मनी की वो भी एक कम रेट पे ये प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ ट्रेड का प्रमोशन भी अगर हम देखें तो उसमें भी कई हद तक पोस्ट ऑफिस का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और अगर हम डिस्टेंस लर्निंग की बात करें तो उसमें भी पोस्ट ऑफिस हमारे साथ साथ रहे हैं, चाहे वो मटेरियल भेजने की बात हो या किसी और तरह की कम्युनिकेशन की बात हो। थैंक यू सो मच लर्नर्स।